तो आपके सामने पहली बात चाहे श्री गुरु नानक साहब जी की बाणी लिखी जा रही है। इसमें उन्होंने इस संसार सागर का एक फोटो खींचा है कि हम लोग इस दुनिया में किस तरह से बह रहे हैं और हमारे निकलने का इसमें से कौन सा सामान है। बड़े प्यार से सुनिए।
राग मारू महला पहला। बिख बोए थाला दिया दिया समुंद मंझार कंधी दिस नाया वही ना उर्वार ना पार।
साल फरमाते हैं कि ये संसार सागर जो है ना एक समुद्र है जिसका ना कोई आर है ना पार है। कब से ये बना? हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है, खास खास ब्याज दी भी है, पर उसकी भी सर्टिनिटी कोई नहीं। आर्या समझ 4 अरब कुछ है, पर ये अंदाजा भी इस मौजूदा पैदाइश का है जो पढ़ने के बाद हुई। उससे पहले कई पढ़ने आई, कई महापढ़ने आई, क्या पता है कब से दुनिया बनी। तो कहते हैं कि ये दुनिया संसार सागर एक बड़ा भारी समुद्र है, बड़ा खतरनाक, जिसमें लहरें उठ रही है, इसमें भंवर पड़ रहे हैं और उसमें जहाज बह रहा। वो जहाज किससे लदा पड़ा है? बिख से, माया से, की जहर से भरा पड़ा। देखिए ये जिस्म रूपी जहाज कहो दैया कहो बह रही है संसार सागर में, ऐसे संसार सागर में जिसका न आर है न पार है। कब से दुनिया बनी? अभी मैंने आपके सामने अर्ज की, कई पढ़ने कई महापढ़ने आई जिसका कोई अंदाजा नहीं। इस पिछली पढ़ने के बाद का अंदाजा कुछ 4 अरब कुछ साल है। तो ये जिस्म रूपी जहाज समझो बह रहा है संसार से, और ये किससे लदा पड़ा है? कहते माया, माया की जात। माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं भूल का नाम। ये शरीर मूल है माया, ये जो जिस्म है ना ये माया का मूल है, यहां से माया चलती है। हम इस जिस्म के चलाने वाले थे मगर जिस्म का रूप बदल गया। हम अपने आप को तमीज नहीं कर सकते, हम जिस्म है या इस मकान जिस्म के चलाने वाले हैं, ये मकान है या इसके मकीन है। आखिर एक समय आता है इससे इसका मकीन से जुदा होता है। ऐसे ही जिस 4 भाई उठाकर शमशान भूमि में पहुंचा अपने हाथों से दाग दे। तो जिस्म रूपी जहाज समझो संसार सागर में बैरा लदा हुआ भूल से है, माया से है, माया के साथ मोह बन जाता। जब भूल में आए तो जिस्म का रूप बन गए, जगत का रूप बन गए, तो इसके साथ अटैचमेंट कुदरती बात। तो क्या हम सब बह रहे हैं एक ऐसे समुद्र में जिसका ना आर है ना अंत है? कब से बना? नो बड़ी दोस्त। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि समुद्र के बीच में संसार सागर में ये जहाज बह रहा है, माया से लड़ा पड़ा, माया की जात से आलूद है, जीव इसका रूप बने बैठे बह रहे हैं बेअख्तियार। ये कब से संसार सागर शुरू हुआ, कब इसका अंत है इसका कुछ पता नहीं। ये एक ऐसा समुद्र है जिसका कंदी दिश ना आवई ना उर्वार ना पार, उसका किनारा कोई नजर ही नहीं आता, ना आर नजर आता है ना पार नजर आता है। बेअख्तियार तला तुम इन मौजनों में कहो तूफानों में इंसान बह रहा। सब जग जात बह, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं सारा जगत ही बह रहा है इस संसार समुद्र में माया के अंतर लदा हुआ, भूल में गया हुआ, जहर आलूद होकर हिंदू के भोगो रसों में लंपट होकर कभी गोते खाता है, कभी ऊपर आता है, कभी गोते खाता है। कोई किनारा इसको, कोई किनारा इसका नजर नहीं आता कि कौन सा किनारा। आप देखिए, आप बैठे हैं, न पास्ट का पता है न फ्यूचर का, एक नशे में जा रहे हैं। जैसे एक इंसान दरिया में बह रहा हो तो उसको सुध और बेसुधी होती है, बेखबरी में जाता है, उसको होश ही नहीं, बह रहा जिधर लहरें ले जा रही है उधर जा रहा। मन रूपी लहरें, मन रूपी समुद्र में अनेक लहरें उठ रही है, मन समुद्र लख ना पड़े उठे लहर अपार, मन रूपी समुद्र में अपार लहरें उठ रही है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह, कभी अहंकार, ये लहरें के तलातम मच रहा, तूफान उठ रहे, सब जहाज ऊंचे नीचे हो रहे, ऐसी हालत में दुनिया जा रही है। ये किनको नजर आता है? जो किनारे देख रहे हैं कि दुनिया किस हालत में जा रहे हैं, जो दरिया में बह रहा हो ना गोते खा रहा हो, उस बेचारे को कुछ होश ही नहीं आगे क्या और पीछे क्या, पढ़े लिखे अनपढ़ अमीर गरीब हाकम महकूम सब एक ही चीज में बह रहे, एक ही हालत में जा रहे, ऐसी हालत में कौन निकल सकता। आगे बतलाएंगे बड़े प्यार से, सबसे पहले फोटो खींच रहे हैं कि हमारी हालत क्या। यहां समाज और कौमों मजहबों का सवाल नहीं है, हर एक आत्मदेहधारी के सवाल हैं, मनुष्य की हालत क्या हो रही है। सब धक्के खा रहे, लहरें उठ रही है, जिधर लहर आई उधर बह गए, देख लो हमारी हालत है, काम का वेग आया काम में गिर गया, क्रोध का आया क्रोध में गिर गए, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली धड़ेबंदी, कभी मोह में आया तो मोह में रंगे गए, जैसा रंग आया वैसे नाच उठे, अपने आप पे की होश नहीं, बेसुध और बेखबरी में जा रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, परमात्मा को भूल रहे हैं, इसमें सारी दुनिया ही जा रही है।
दिख बोहे थाला दिया दिया समुंदर मंझार, कंधी दिसना आवई ना उर्वार ना पार, वन्नी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल।
ऐसा ये समुद्र बड़ा भयानक है, जैसे पंजे नाग भयानक होता है, नहीं कहते ये संसार सागर को देखकर सभाव सागर इसको कहा, इसीलिए ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयभीत है, भाव का सागर। इसका क्या हालत है, जहाज में दो चीजें होती है, एक तो उसके चलाने वाला कैप्टन हो मल्लाह, दूसरा एक वंज होती है, वंजी कहते हैं वो एक लंबा सा बांस रखते हैं, उससे मापते रहते हैं कहां पानी कम है कहां ज्यादा, जहां कम हो कि चट्टान हो उसे पता लग जाता कि टकरा करना गिर जाए। जहाज की हालत क्या है, ना उस पर कोई बुला है न कोई वज मापने वाला है, ये देखने को कि चट्टान कहाँ है, ऊंची जगह कहाँ, गहरी जगह कहाँ, लहरों में जहां थपेड़े में आया उधर बह गया, ये हालत इसकी जा रही है। जिस जहाज की ये हालत हो बताओ उसके बचने की क्या उम्मीद हो सकती है। तो जिस इंसान ये कहो जिस उम्र की नैया में जो हम सवार बैठे हैं, हमारे ना कोई मल्लाह है ना कोई मापने वाला पैमाना है, कहाँ गहरी है जगह, कहाँ चट्टान है, कहाँ पत्थर है, पानी के नीचे सामने पत्थर टकराए जहाँ टूट जाएगा, क्या एक बड़े भाव सागर में खतरनाक हालत में हम सब जा रहे हैं। आलिम बेलम सब एक ही हालत से जा रहे हैं, जिस जहाज पर कोई मल्लाह न हो, कोई मापने वाला वंज न हो, फिर उसकी क्या गति, आज ना टकराया कल टकराएगा, कल नहीं टकराएगा परसों टकराएगा, उसकी बहबूदी अमन में वो नहीं, सेफ्टी नहीं उसकी। देख
वन्नी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाथा माजाल, बाबा जग फाथा महाजाल।
आप गुरु नानक साहब कहते हैं کہ ہے مالک جگت بڑے بڑے جال میں مہا جال میں پھنس رہا, نکلنے کو کچھ سامان نہیں, بیڑی اور جہاز پر ملا بھی نہیں, ونج بھی نہیں, خطرے میں بہ رہا ہے, کہیں بھور پڑ رہے ہیں, کہیں لہریں اٹھ رہی ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے, درکار دریا تخت بدم کر رہی, بعد میں گوئی کے دامن ترم کن ہوشیار باش, کہ سمندر کے درمیان ہمارے تختے کو چھوڑ دیا, کہتے ہیں خبردار کپڑے نہ بھیگ جائے, لہریں اٹھ رہی ہیں, بھیگ جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے. جب تک کوئی نکالنے والا سامان ہو, ہم تو ملائی جانتے نہیں, ہم کو تو اپنی آپ کی شدھی, ہم پر تو مایا کی زہر چڑی پر یہ ہے, ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں, جسم کا روح بن چکے ہیں. یہ حالت ہے جس میں ہم سمجھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہے مالک جگت بڑے مہاجال میں پھنس رہا ہے, دیا کرو اس کو نکالنے کا. کیسے نکل سکتا ہے ایسی حالت میں, آپ بتائیں, کوئی امید ہے زندگی کی؟ ایک سمندر ہو, یہ اس سے پوچھے جو دریا میں بہ رہا ہو, جس کو بے شدھی اور بے خبری ہو, ہوش والے کو بھی وہاں ٹھکانا نہیں, معاف کر رہا, اس کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے, کوئی نکلنے کا سامان ہو, کوئی مدد پہنچ جائے, کوئی چپو پہنچ جائے, کوئی ملا پہنچ جائے, کسی نہ کسی طرح اس کی بیڑی کو باہر نکالنے کا سامان کریں, جو اپنے آپ بے اختیار لہروں پر, لہروں کی برسی پر جا رہا. بتاؤ اس کی کیا گتی ہو. تو پکار اٹھتے جب مہاتما دنیا کی حالت کو دیکھتے ہیں, تو پکارتے ہیں مالک یہ تو بڑی بری طرح پھنس رہے ہیں, ان کے نکلنے کا سامان کیا ہو. جی
بابا جگ فاتھا مہاجال, گور پر سادی ابرے, سچا نام سنبھال.
ایسی حالت کے جو انسان محسوس کرتا ہے, وہ پکار اٹھتا ہے کہ ہے مالک ہمیں بچاؤ. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہماری حالت ہی کیا ہے, ہماری حالت اصل میں یہی ہے, مگر ہم مایا میں جا رہے ہیں, بھول میں جا رہے ہیں, نشے ٹھکورے کھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں ہے. جس کو تھوڑا احساس جاگتا ہو ہے مالک بچاؤ, جب دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اپنی حالت کو دیکھ کر, تو بے اختیار وہ آواز تڑپ مالک تک جاتی ہے. سچی تڑپ ہو, ہمیں احساس ہو کہ ہماری حالت کیا درگتی ہو رہی ہے, کس حالت میں ہم جا رہے ہیں, لاچاری کی حالت میں, ہر قدم قدم پر ڈوب جانے کا خطرہ ہے, تو ایسی حالت میں بے اختیار وہ پکارے گا کہ نہیں, دل سے آواز اٹھے گی ہے مالک کوئی سامان کرو ہمارے بچانے کا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے, مالک سامان کرتا, کسی گرو کو ملا دیتا, کسی ملاح کو ملا دے بھیج دیتا, ارے بھائی تم اس جہاز کو کس طرح سے پاس محفوظ پہنچا سکتے ہو, کنارے سنسار ساگر سے تم تر سکتے ہو, تو اس کا نام ہے گرو. جس جہاز میں کیپٹن ملاح بیٹھ جائے اور بڑا ماہر ملاح بیٹھ جائے, تو وہ آپ کو اس سمندر کی جو لہریں اٹھ رہی ہیں, طوفان اٹھ رہے ہیں, اس سے نکال کر لے جائے گا. آپ یہاں دیکھیے سمندر کی کیا حالت ہوئی ہے, جب طوفان آتے ہیں تو کیپٹن پر ساری ذمہ داری ہے, وہ کیا کرتے ہیں جو اس پر سوار ہوتے ہیں سب کو لائف بیلٹ دے دیتے ہیں باندھنے کے لیے, اگر کہیں ایسی حالت ہو تو چھلانگ مار جاؤ, جہاز ڈوبنے لگے تو, اگر ڈوبنے کوئی گر بھی جائے تو بھی وہ کوئی نہ کوئی سامان کرتے ڈوبنے نہیں دیتا. یہاں کی حالت ہے, ارے بھائی اگر ہماری جسم روپی جہاز میں کوئی سمرتھ پرش ساتھ ہو جائے, گائیڈنس کے لیے, مدد کے لیے سدا انگ سنگ ہو جائے, تو ملا مل گیا نہیں, وہ اس سنسار ساگر کا واقف ہے, اس کے تلاتم جو یا لہریں اٹھ رہی ہیں, طوفان اٹھ رہے ہیں, اس میں انیکوں جیووں کو پار کیا, وہ ماہر ہے اس کام میں, وہ پھر پرماتما سنتا ہے, ایسی ہستی سے ملاپ کر دیتا, اس کا نام ہے گرو. کہتے ہیں اگر گرو مل جائے وہ دیا کر دے, ایسی حال جو احساس ہوئی نیچرلی, جہاں آگ جلے گی آگ سی مدد کو آئے گی. ڈیمانڈ اور سپلائی کا نیم اٹل ہے جب سے دنیا بنی, آج 500 سال, 1000 سال, 10,000 سال, لاکھ سال پہلے بھی جو بچے پیدا ہوئے ان کا سامان قدرت نے ماتا کے اندر پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا تھا دودھ پہلے پیچھے تھا دودھ کا سامان پہلے جو آج پیدا ہو رہے ہیں آج وہی سامان قدرت کی طرف سے ہے جو آگے آئیں گے یہی رہے یہ بدلہ نہیں تو اسی طرح جس ہردے میں اپنی اس حالت میں جانے پر کچھ نظر پڑ گئی کہ ہم اس ادوگتی میں خوفناک حالت میں جا رہے ہیں تو وہ پکار اٹھے گا جب پکارے گا اس کے لیے سامان حضرت جنید صاحب کے متعلق ذکر آتا ہے کہ خدا رسیدہ پوش تھے ایک دفعہ گھوڑی پر سوار جا رہے تھے تو گھوڑی پر جاتے ہوئے گھوڑی بزور ہو گئی جس طرح وہ لے جانا چاہتے تھے نہیں جا سکتے تھے انہوں نے گھوڑی کو چھوڑ دیا سب طرف میرے خدا کا ملک ہے چلو جا چلتے گھوڑی سرپٹ ہو گئی جاتے جاتے ایک پہاڑ کی کندر میں جا کھڑی ہوئی اترے دیکھا گردہ گرد کیا بات ہے کیا اس پرماتما کی مصلحت کیا ہے دیکھا تو ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا پوچھا رہے بھائی تم کون ہو کہہ رہا کہ میں بڑی تلاش میں رہا کہ کوئی مہاپرش مل جائے مجھے پرماتما کے ساتھ ملانے کا ذریعہ بن جائے بڑی تلاش کی کہیں نہ ملا آخر ہار کر میں نے کہا میں ایک ایسی جگہ اختیار کر لوں جہاں کوئی بھی نہ پہنچ سکے دیکھتے ہیں قدرت کیا کرتی ہے قدرت کا نیم ہے جہاں آگ جلے گی آگ سے جن بند کو آئے گی آج آپ آگ ہیں ان سے سمجھایا بجھایا رستے پر ڈالا جب چلنے لگے تو کہنے لگے فلانے ملک میں فلانے شہر میں رہتا ہوں اگر پھر آئندہ آپ کو ضرورت ہوتی تو پھر وہی آ جاتا تو کہنے لگا بھائی آگے جو آپ کو یہاں کھینچ لایا پھر بھی لے آئے گا اگر الفت میں جذبہ ہے کشش ہے تو کھینچ کر آ ہی جائیں گے ضرورت کا سوال ہے ہمیں ضرورت ہو سی بھگوان دیکھ رہا ہے کون بچے مجھے لوچ رہے ہیں کون بچے ہیں جو سنسار ساگر بھاو ساگر میں بہتے ہوئے سیفٹی چاہتے ہیں ان کی آنکھ کھلی ہے احساس ہونے لگا دھکے کھا کر ہوش آنے لگی ہے اس کے لیے وہ سامان کر ہاں یہ پکارے دل سے نکلے زبان سے نہ تب جو پکار صرف زبان سے نکلتی ہے دل سے نہیں نکلتی تو وہ بالغ تک نہیں جاتی جو تیر کھینچ کر سینے تک آتا ہے وہی نشانے پر جاتا جو تیر وہیں کا وہیں گر جاتا وہ کہاں جاتا تو ہردے کی آواز اس مالک کو سب سے پہلے پہنچتی ہے کیڑی کی آہٹ اس کو پہلے جاتی ہے ہاتھی کی چنگاڑ پیچھے پہنچتی ہے دل کا تعلق ہے کہتے ایسی حالت میں جب اس کو ہم احساس کرنے لگتے ہیں مالک کوئی نہ کوئی سامان نکلنے کا کرتا وہ کیا ہے گرو کی شکل میں وہ ملا دیتا ملے کو ملا دیتا جو اس بھاؤ ساگر سے جس نے انیکوں جیووں کو پار کیا ہے اس پر وہ ملا دیتا اور وہ کیا کرتا ہے کہتے ہیں ہماری چھوٹی سی جو نیا ہے نا اس کو نام کے جہاز میں رکھ لیتا نام کے جہاز آپ پتہ ہیں کہ جہازوں پر لاکھوں من ہزاروں من لوہا چلا جاتا ہے لاکھوں من لکڑی چلی جاتی ہے پتھر چلے جاتے ہیں ڈوبتے تھے ایسے ہی جو سچے نام کا جہاز ہے نا اس پر وہ سوال کر دیتا گرو پر سادی ابرے سچا نام سوال سچے نام کے جہاز پر بٹھا دیتا وہ گرو کرپا سے وہ تو خود ملا بنتا ہے اور نام کا جہاز پر جوڑ دیتا نام سچا نام یہاں سچا نام بنتا ہے اس کا مطلب کوئی ایسے نام بھی ہے جو سچے نہیں بیٹھ جاؤ بھائی جو سچے نام نہیں سمجھا تو سچا نام اور سچے نام نہ دو چیزیں بنی نا وہ کیا ہے پرماتما کے انیکوں نام رشیوں منیوں مہاتماؤں نے جو آج دن تک قائم رکھے اس کے سمجھانے بجھانے کے لیے کسی نے رام کہا، کسی نے اللہ کہا، کسی نے خدا کہا، کسی نے بسمبر کہا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. یہ انیکوں نام ہے جو رشی منی مہاتماؤں نے اس پرماتما کے بودھ کرانے کے لیے رکھے. یہ ہے اکشری نام، یہ ہے اکشری نام. سمجھے؟ اکشری نام سے ہم نے چلنا ہے. اور یہ اکشری نام کسی اور طاقت کو بودھ کراتے ہیں جس کی یہ دیکھو نام. دیکھیے ایک پانی ہے، پانی کو جل بھی کہتے ہیں، نیر بھی کہتے ہیں، آب بھی کہتے ہیں، واٹر بھی کہتے ہیں، ایکوا بھی کہتے ہیں، ہر ایک زبان میں اس کے نام ہے. یہ ہے اکشری نام. یہ اکشری ناموں سے چل کر جس کو یہ بودھ کرا رہے ہیں اس کے ساتھ جب تک ہم نہیں لگتے تب تک پیاس نہیں بجھتی. اس کے پینے سے پیاس بجھے گی، اس میں نہانے سے ٹھنڈک پڑے گی. خالی اکشروں کے اچارن کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا. اکشروں سے ہم نے چلنا ہے، ان کی بھی ضرورت ہے جپ کے لیے، سمن کے لیے. کیوں؟ دنیا کا ہم روپ بن گئے. کیسے؟ دنیا کا سمن کر کر یاد کر کر. تو اسی طرح اب جو دنیا ہم میں بس گئی ہے اس کو اگر انتر سے نکالنا ہے تو پربھو کے نام کے سمن سے نکالنا، اکشر ناموں کے سمن سے. یہ پہلا کرنا. اور سمن کرتے ہوئے نبھی لوہے کو لوہے سے کاٹنا. دنیا کا خیال ہمارے دل دماغ سے نکلے گا اور پرماتما کا خیال دھوا آدرش کا ہو بیٹھے گا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اکشری نام جس کو بودھ کرا اس کے ساتھ جڑو. ذات حق ایک واحد ہستی، اسی کے سمجھانے بجھانے کے لیے انیکوں نام رکھے گئے. کسی نے کہا رام، رام کے میں نے ہے رما ہوا، پرماتما جو رم رہا. رام اکشر اور رام وہ چیز جس کو اکشر بودھ کرا رہا، دو چیز ہوئی نہیں. جو رام طاقت ہے رم رہی وہ ہے سچا نام. جو رام اکشر ہے یہ ہے اس کے سمجھانے بجھانے بودھ کرانے کے لیے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ نام کے جھاگ پہ چڑھا دیتا. نام کے جہاز پر جو چڑھ گیا، یہ کہاں پر ملتا ہے؟ انیوں کے گھاٹ سے جب آپ اوپر آئے. ادرشت اگوچر نام اپارا، یہ باری دشٹی کا مضمون نہیں، آپ کو انترمکھ ہونا پڑے گا، انورٹ کرنا پڑے گا، انیوں کے گھاٹ سے اوپر آنا پڑے گا. تب وہ نام کا ڈیوائن لنک جو پریپورن پرماتما ہے نا، جس کے انیکوں ناموں اس کا کانٹیکٹ ملے گا. اب دنیا کی لہریں، من میں جو من روپی سمندر جو لہریں اٹھانے والی چیزیں، وہ کون تھی؟ اندریاں ہیں. اندریوں سے آتا ہے نا وہ باہر. آنکھوں سے 83% سنسکار ہمارے اندر میں آتے ہیں، 83% ابھار دینے کے لیے. کانوں سے 14% سنسکار آتے ہیں ابھار دینے کے لیے. باقی 3% باقی اندروں کے رہتے ہیں. تو اندروں کا دوارا ایسا ہے جس سے ہمارے اندر ہلورے اٹھتی ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ اندریے دمن ہو. اندریے دمن ہو تو ہلورے نہ اٹھی نا. ہلورے نہ اٹھے گی تو من استھر ہوگا. من استھر ہوگا تو بدھی بھی ساتھ استھر ہونے پر آتما کا ساکشاتکار ہوتا. ایک پیالہ ہے، اس میں 3 سوراخ ہے، کہہ دو، جس میں ہوا اس میں جا رہی ہے زور سے. پانی ہے بیچ میں گدلا، اس میں ہلورے اٹھ رہی ہے، بڑبڑی اٹھ رہی ہے، لہریں اٹھ رہی ہے. اگر آپ وہ سوراخ بند کر دیں جس سے کہ ہوا آ کر اس میں ہلور پیدا کرتی ہے، تو پانی کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں؟ پانی میں جو میل ہے اس کو اگر تھوڑی پھٹکڑی ڈال دو، میل کٹ کر نیچے بیٹھ جائے گی، پانی صاف شفاف ہوگا، آپ کی شکل نظر آنے لگ جائے گی. تو اسی طرح اندریوں کو دمن کرنا یہ پہلا قدم. اندریے دمن ہو، من کھڑا ہو اور بدھی بھی استھر ہو، تب آتما کا ساکشاتکار ہوتا. اوپر آ گئے उसको उस डिवाइन लिंक के साथ जिसको परमात्मा परिपूर्ण हम कहते हैं, नाम कहते हैं, उसके साथ जुड़ गए। वो फटकड़ी है यज्ञों यज्ञों की मैले दूर कर ली थी। गुरु नानक साहब ने इसके मतलब मिसालें दे देकर जपजी साहब ने समझाने का यत्न किया है। पर ये हाथ पैर तंदे पानी धोते उतरसखे, अगर हाथ और पांव मिट्टी से भर जाए तो पानी के धोने से साफ हो जाते। फिर क्या कहते हैं, मूत पलीती कपड़ हो दे साबुन नहीं है धो, पेशाब और गंदगी से अगर कपड़ा भर जाए तो साबुन से साफ हो जाता। फिर क्या कहते हैं, परिये मत पापा के संग ओ तो पैदावे के रंग, अगर मति पापों से भर जाए तो नाम की रंगन से धो जाए। नाम समझ गया आप, वो अक्षर नहीं, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम वो ताकत है जिससे खंड ब्रह्मंड सब बनाए गए धारे गए। नामे ही ते सब जग हुआ बिन सदगुरु नाम न जापा, नाम वो ताकत है जिससे सारा जगत इंटू बीग हस्ती में आया, उसका नाम नाम। तो नाम अक्षर ना रहा है ना, जिन्ही नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिन्होंने नाम को दिहाया है अंतर्मुख उससे कांटेक्ट किया है, उससे जुड़े हैं कहो जो उससे लगे हैं, उनके जीवन मनुष्य जीवन की जो यात्रा थी ना मुशक्कत सफल हो गई, उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए हैं और उनके साथ अनेकों जीवों का उल्हार। इस नाम में और अक्षी नामों में बड़ा भारी फर्क है। एक लफ्ज है नेम, एक नेम्ड है, एक इस्म है एक मुसम्मा है। मौलाना रूह साहब कहते हैं, इस्म खानी राव मुसम्मा रा बिजो, बेमुसम्मा इस्म का बाशी देखो। तुम नाम ले रहे हो, जाओ नामी को पकड़ो जिसके ये नाम है, बगैर नामी के खाली नाम तुमको पूरा फायदा कैसे दे सकते हैं। और काफी जरूरत है, मैंने अभी अर्ज की थी, दुनिया के सिमन को प्रभु के सिमन से काटना है ये उसका काम, मगर अंतर्मुख जन्मों जन्मों के मैले काटने का इलाज नाम है। उस नाम में खास फजीलत है, निशानी। नाम जपत को सूर उजियारा, नाम जपती हुए करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है, ज्योति प्रकट होती है। अक्षी नामों से नहीं, फिर उसमें प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा, तो दो ये उसके इजहार हैं नाम के हर एक घट घट में। जब सुर को उस पर सवार कर दिया जाए, वो कहां ले जाता है, जहां से कब आ रहा, परमात्मा नाम है, समझे। नाम उसके मिलाने की डोरिया जिसका डिवाइन लिंग घट घट में मौजूद है। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका विश्राम, नौ निधियों के देने वाला प्रभु का नाम है, जिसका बासा इस देह के अंतर है। तो जो इस संसार सागर की लहरें मैंने अभी अर्ज की कहां से आती है, इंद्रियों के घाट से आती है, वो आपको अंतर्मुख कर देता है बाहर की माया की लहरें उठती रही बस स्थिरता को पा गए। और मन बाहर मुखी इंद्रियों के बहु वर्षों में क्यों लंपट है, इसलिए इसको यहां कुछ लुत्फ आ रहा, जो दुनिया में रस या लुत्फ आ रहा है, ये दो चीजों पर तकसीम हो जाता है। एक सुरीली आवाजें गाना बजाना, दूसरे नजारे रूप, दो ही चीजें हैं जो दुनिया में इसको लंपट कर रही है। नाम के अंतर ये दोनों चीजें, उसमें दूर भी है अंतर्मुख स्थूल, ये दुनिया है सूक्ष्म कारण, और उसके ऊपर देशों में निहायत खूबसूरत नजारे भी हैं और उसके अंदर सुरीली धुनें भी हैं। उसको सुनकर मन लज्जत, उस महारस को पाकर मन बन जाता, दौड़ने के काबिल नहीं रहता। जब वो रस आवा ये रस नहीं भावा, इस तरह मन स्थिर हो जाता है। इंद्रिय दमन करने से पहले बाहर की लोरें बंद हुई, अंतर नाम का रस मन मिल गया, मन खड़ा हो गया। मन के साथ ये जो डिस्क्रिमिनेट करने वाली बुद्धि है ना, माया मापने का पैमाला घटघट में, ये भी स्थिर हो जाता है। मैवियत में सब स्थित आ जाते, ऐसी हालत में आत्मज्ञान आत्मानुभव होता, फिर ओवर सेल्फ का सवाल शुरू होता है, परमात्मा क्या है क्या नहीं। इसीलिए एक मुसलमान फकीर ने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर्न बीनी सिरे अकबर मन में, आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, यही तीन रस्ते है ना बाहर की, जबरदस्त तरीके जिससे कि मन बाहर भागता, बाहर के संस्कार हमारे अंतर में बैठते हैं, इनको बंद कर लो। कहते फिर अगर तुम्हारे अंतर असलियत का राज न खोले परमात्मा का, तो मुझ पर हंसी कर। गुरबानी में आया है, दस इंद्रे जो राके बास ताके आत्मा होए प्रगास। दस इंद्रियों को पांच कर्म इंद्रे पांच ज्ञान इंद्रे, जो इनको दमन कर लेता है, बस में कर लेता है, उनके आत्मा के अंदर प्रगास नूर प्रकट ज्योति प्रकट हो जाता है। बड़ी साफ हुई, ये क्राइस्ट ने कहा, यू शट द डोर्स ऑफ द बॉडी यू सी द लाइट ऑफ हेवन। अगर तुम बाहर आउटगोइंग फैकल्टीज जो है इनको बंद कर लो, अंतर में खड़े हो गए तो खुदा का नूर नजर आए। है अब भी हम क्योंकि बाहर एक्सप्रेशन में जा रहे हैं, इजहार में जा रहे हैं, फैलाव में जा रहे हैं, इसलिए वो अंतर व्यक्ति अंतर नहीं, बाहर देख रही अंतर को कौन देखे। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया, नाव कर देख जो कामुर भूली बस अनूप न पाने। नाव घरों को इस जिसम में नौ द्वारे हैं, दो आंखों के दो कान दो नाशिका मुंह गुदा और इंद्रिय, इसमें जो रूप बाहर भटक रही है इसके अंदर अनूप बस तब उसको कैसे पा सकते। तो फरमा रहे हैं जब गुरु मिल जाता है ना, दिल में यह एहसास हो दुनिया के थपेड़ों से दुखों से आलाइशों से बेबसी की हालत जब महसूस करने लगता है, वो कहीं ना कहीं रिफ्यूज ढूंढता। जब ये पुकार हृदय से निकलती है, मालिक किसी माहिर पुरुष को मिला देता है, जो संसार सागर से हजारों लाखों जीवों को ले जाता है। गुरमुख कोट उधार ना देना वे खड़ी, करोड़ों जीवों का उधार किया, उसके लिए एक मामूली बात है, हमारे लिए बड़ी बात है। पर रोज इस समुद्र संसार सागर भाव सागर का वाक्य है, इसकी हर एक चीज से जानू है, जानते हुए हजारों लाखों करोड़ों को बचाया औरों को बचा देता। गुरुमुख कोट उधार का देना में ही करे, गुरुमुख जो है वो करोड़ों जीवों का उधार थोड़ी तवज्जो देकर कर देता, वो क्या नाम के साथ जोड़ देता। इसी नाम को प्रणव की धुनी कहा, इसी नाम को उद्गीत उपनिषदों ने कहा उदर का राग, इसी को नाद कहा दास से 14 भवन बने, इसी को आकाशवाणी कहा, इसी को वाक सिद्धि करके ऋग्वेद में बयान किया। चीज वही संतों ने उसे नाम और शब्द करके बयान किया, मुसलमान फकीर ने उसे कलमा कहा, क्या कलमे से 14 तबक बने, ईसाइयों ने उसे वर्ण कहा, ज़ोरास्टर ने उसे सरोशा का बात है कि कटकट में मौजूद है। वो सच्चा नाम पर जो सवार हो जाए गुरु उसका बला बन जाए फिर क्या कहना। तो ये एक तरीका है जो इस भाव सागर से जीवों को पार ले जाने वाला, जो बचे इसी तरह बचे, जो बच रहे हैं इसी तरह बच रहे हैं। अभी तक कानून नहीं बन रहा।
बाबा जग फाथा महाजाल, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादे उबरे सच्चा नाम संभाल, सत गुरु है बोए था शब्द लगावण हार।
अब इसको और तरीके से बयान करते हैं, सतगुरु किसको कहते हैं, सतगुरु सत स्वरूप है, सदगुरु वो हस्ती है जो सत का स्वरूप हो चुकी है, वो दे रखता है, मगर उसकी आत्मा प्रभु का माउथ पीस बन चुकी है, इजहार की जगह बन चुकी है। तो कहते हैं सदगुरु सत का स्वरूप है, अब सत किस को कहते हैं? नाम नाम सत जगत असत नाम परिपूर्ण परमात्मा के ही नाम नाम है जो जरे जरे में आधार दे रहा हूं वो उसका माउथ पीस बन गया सत स्वरूप जो हो चुका। अब कहते हैं वो नाम भी जहाज है और कहते हैं जिसमें वो जो मुजस्म होकर आया है वो भी जहाज है। उस नाम को तो अभी देखा नहीं ना हमने। सदगुरु को हम जाहिरत देख रहे हैं, हमारी तरह चलता फिरता नजर आता है, हमदर्दी करता है हमसे, हमारे निकालने का सामान करता है, हर एक तरह से दया करता है। तो कहते सदगुरु के जहाज पर बैठते हो। सदगुरु का जहाज किस चीज का? वो भी उसी का बना हुआ और वो जोड़ता भी उसी चीज से जिसका वो खुद बना हुआ है। नाम कहते सदगुरु जहाज है, पहले नाम को जहाज कहा, अब सदगुरु को जहाज कहते। कहते सदगुरु है बोए था शब्द लगा होगा, वो शब्द पावर, नाम और शब्द पावर का सवाल हो गया। एक इजहार की जगह ब्रह्म बोले काया के बोले काया बिन ब्रह्म क्या बोले, एक ब्रह्म हुआ एक काया में इजहार ब्रह्म का हुआ, दो चीजें बनी ना। जो ब्रह्म का इजहार काया में है वो है सदगुरु। ब्रह्म से मुराद यहां शुद्ध कुटस्थ ब्रह्म से है जो ब्रह्म का भी आधार है। तो सत्स्वरूप हस्ती के पास बैठ जाओ, वो तुमको नाम की पावर से जोड़े जो खींचने वाली है, संसार सागर से पार ले जाने वाली पावर कौन सी है? शब्द या नाम पावर। तो ऐसी जब खींचने वाली जबर मोटर जबरदस्त, समुद्र कितना भी दरिया लहर में हो अगर मोटर बोट में आप बैठ जाए तो उस जोर से चला जाता है लहरों के ऊपर, छलांगे मारते चली जाती, डूबती नहीं। कहते ऐसा जहाज जिस्म जो सदगुरु के जहाज पर चढ़ा हो और नाम पावर उसके खींचे हुए अंतर खींच रही हो, संसार सागर में डूबती नहीं, उसके निकलने का यही सामान। जैसे मोटर हो, मोटर एक तो ड्राइवर होना चाहिए ना, डायरेक्शन चाहिए किधर जाना, तो डायरेक्शन जो है वो गुरु ने दे दिया। ले जाने वाली पावर उसमें वो बिजली और पेट्रोल काम कर रही है। बस यदि ऐसे जहाज पर तुम सवार हो जाओगे तुम भाव सागर से पार हो जाओगे। फिर आगे और बयान करेंगे कि ये जहाज जो सदगुरु बनाता है चढ़ाता, वो जहाज किस चीज का बना हुआ, मिसाल देकर समझाने का यत्न किया।
इत्थे पवन ना पाव को ना जल ना आकार।
कहते बाहर के जहाज तो लकड़ के बने हुए होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं, लकड़ से आग जलाकर चलते हैं, यही है ना बाहर के जहाज, और पानी के समुद्र में चलते हैं। कहले ये जो जहाज चलता है सदगुरु का, ये ना लकड़ के आसे आग के आसरे चलता है ना पानी के आसरे चलता है, समझे, ना ही संसार सागर इसमें कोई पानी समुद्र है जिसमें बाहर है। तो ये अंतर की पावर है जो चलाने वाली है। ये ना कोई समझने को किस चीज का बना हुआ वो जहाज, कहते ना वो पवन का बना हुआ है, ना लकड़ है, ना जल है, ना आकार है। उसकी बनावट भी कौन सी, जहाज की तो खास बनावट है, शब्द पावर की कौन सी बनावट है, कोई बनावट नहीं। सदगुरु जिस्म रखता है मगर वो खुद दे इतिहास से ऊपर है, उसी पावर का इजहार करने की जो ताकत है उसका नाम गुरु है। गुरु जिस्म नहीं, जिस्म रखता है, हम जिस्म का रूप बने बैठे, फर्क यही। तो कहते हैं वो जहाज ना पानी का से चलता है, ना आग से चलता है, ना लकड़ों के जलाने से चलता है, वो शब्द पावर से चलता है, शब्द खींचने वाली पावर। देखिए ये इंजन चल रहे हैं ना बाहर, इसमें आग भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, कोला भी डालते हैं, स्टीम बनती है वो खींचती है। जो इलेक्ट्रिसिटी के इंजन है बम्बे की साइड में जाओ, वहां आग से कोई नहीं जलाते, वो इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ इशारे पर चलते। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी भी उसी शब्द के लोएस्ट इजहार है, उसका इजहार प्राण है, उसका इजहार पहले आत्मा है, फिर प्राण है, फिर बिजली है, ये सब उसी के इजहार है लोएस्ट डिग्री के। कहते वो आश्रय शब्द के आश्रय चल रही, सारा संसार जितना जिसकी आत्मा उसके साथ लग गई कहाँ जाएगी, जहां से वो आ रहा है। परमात्मा शब्द है, अनाम है, जो शब्द से कांटेक्ट कर गई, इंद्रों के घाट से ऊपर आकर आगे चक्र के ऊपर नीचे छह चक्रों में नहीं, तो वो शब्द खींचने वाली पावर ले चले, कहाँ ले जाएगी, जहां से वो आ रहे। स्वामी जी महाराज ने इसको बड़ा निर्णय किया, फरमाते हैं बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे न कूदा। शब्द के बगैर और कोई उपाय नहीं जिसे ये काया के कूदे से हमारी रूह पर आ सके। अब जिसे मैं कैद है ना, इंद्रों के घाट इंद्र जाल में बंधे हुए हैं, इसे ऊपर लाने वाली कौन सी पावर है, कहते शब्द पावर। शब्द भी दो किस्म का, जैसे नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम एक असल नाम, इसे शब्द भी दो किस्म का, एक बाहरी गाना बजाना बोलना जो है, ये सब शब्द है। ये शब्द हमें दुनिया में फंसा रहा है, और एक वो शब्द है जो मिलता है गुरुदेव से, वो संसार सागर से पार ले जाने वाला। कहां पर मिलता है? योगी जन नीचे चक्रों को तय करके जब आगे चक्र पर आता है, आगे अनहद शब्द को पकड़कर आगे चलता है। आगे अनहद शब्द की स्टेजेस हैं, सार शब्द और सत शब्द। तो कोई गुरु आपको क्या कर, पहले पिंड से ऊपर लाते हैं, हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जिस्म से ऊपर नहीं आ सकते, वो आपको बिठाता पहले पिंड से ऊपर लाता, वो शब्द पावर का कॉन्टेक्ट देता, उसमें लाइट भी है और साउंड भी है, उसकी आस से चलता है कहां, जहां से वो आ रहे हैं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि वो जहाज जिस पर गुरु हमें चढ़ाता है नाम का, वो न पानी से चलता है न आग से चलता है, न लकड़ का बना हुआ है न लोहे से बना हुआ, वो शब्द की आस से चल रहा है।
जिथे सच्चा सच नाए भाव जल तारण हार,
फिर उसी को अब क्या कहते हैं कि वो किसके आस से चल रहा है, कहते सच्चे नाम के आस से चल रहा है। जिथे सच्चा सच नाय भाव जल तारना, भाव सागर से तारने वाली वो पावर नाम की है। कैसा नाम? सच्चा सच नाम। सच्चा किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान, जो साचा पुरुष है ना वो ही सच्चा है, उसी का नाम सच्चा नाम। उसके साथ जो कांटेक्ट आत्मा कर गई, जिसके साथ गुरु हमें जोड़ता है, वो भाव सागर से पार चल जाता है। भवसागर से पार जाने का इलाज केवल शब्द और नाम के साथ कांटेक्ट करना है। किसी गुरु का काम क्या है? या आपको इस वक्त जो हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, पहले इसे ऊपर लाए, एनालिसिस कराए, जिस्म बेहिस हो जाए, अंतर की आंख खुल जाए, उस नाम और शब्द में जो ज्योति है उसको प्रकट कर दे और उस श्रुति को सुना दे। फिर उसके वो जहाज है सच्चा जिस पर चढ़कर आगे चलना, वो आपको भाव सागर से पार, पहली बार से हट गए भाव सागर जी, जो तूफान उठते उसे बच जाएंगे, आगे जाने का रास्ता वही है। हाफिज साहब ने कहा, कस न दानिश के मंजिल गए माशूक को जास, हमीन के बांगे जर से भी आया, कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ, इतना कि वहां से घंटे की धुनी आ रही है, प्रणव की धुनी आ रही है। उसको पकड़कर चलो, कहां पहुंचोगे, जहां से वो आ रहे हैं। पार साजद अपार प्रीतम गुरसुरत शब्द लगावे, जिस सज्जन से हमने मिलना है वो सब हदों के पार है। गुरु क्या करता है, हमारी सुरत को जो इस जिस्म का रूप बनी बैठी है, इसको पहले ऊपर लाता, जिस्म और रूह को अलहदा करता, तजुर्बा कराता है इसका, और उसको फिर शब्द पावर से जोड़ देता है। शब्द के साथ लगी कहां पहुंचती है, उस पार साजिद के साथ जहां से वो आ रहा है। तो ये तरीका है भाव सागर से तरने का, तिथे सच्चा सच नाय भाव जल तार, भाव सागर से पार ले जाने वाला। तुलसी साहब जी ने रामायण के बाल कांड में नाम, इसी सच्चे नाम की बड़ी तारीफ की है, राम और नाम का मुकाबला किया, वहां यहां तक बयान किया, अगन सगन द्वय ब्रह्म स्वरूपा निर्गुण और सरगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, अगाध रूपा पे बयान किया। कहते मेरे मत में नाम दहूते बढ़कर, यहां तक कह दिया, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाय। कि नाम की महिमा कितनी बयान की जाए कि अगर राम भी उसको बयान करने लगेंगे तो बयान नहीं करते, क्योंकि वो बयान में आने वाली चीज नहीं। सदियों फिलासफी की चुना वो चुनी रही, पर खुदा की बात जहां थी वही रहे। कितना बयान करे बात पर जो आज दिन तक आते रहे, वो हर एक ऋषि मुनि महात्मा उसके गुणवाद गाते रहे, परमात्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पर वो मजमून खत्म नहीं हुआ, गाने वाले खत्म हो गए। गुरुदार साहब तो यहां तक कहते हैं कि जिन्हें महात्मा आज दिन तक आए हैं इतने और भी आ जाए तो भी आंख न सके कही गए तो भी नहीं बयान कर सके, वो लाभयान चीज है। तो फरमा रहे हैं कि इस भाव सागर से पार जाने का जरिया नाम है, शब्द है, जो घट घट में है, इंद्रों के घाट से ऊपर मिलता है जब तक गुरु हमको मिले। नहीं, हम इंद्रों के घाट से जो लह रहे आ रही, हम दुनिया में डूब रहे होते खा रहे। अब देखेंगे ये जो सवाल है हमारे सबके सामने, सारी मनुष्य जाति की एज ए मैन प्रॉब्लम है, या कौमों मजलों समाजों का सवाल नहीं। अरे भैया, आप किसी समाज में हम मुबारक हो तो हमें एक जैसी बीमारी लगी है, सब संसार सागर में गोते खा रहे हैं। इससे बचने का उपाय यही है कि बाहर से हटो, अंतर्मुख हो, अंतर्नाम डिवाइन लिंक से जुड़ जाओ, वो आपको प्रभु तक पहुंचाने का जरिया। जो तरे आज दिन तक यही तरीका था, जो तर रहे हैं उनका भी यही। ये कानून न बदला है न बदल सकता है, परंपरा से चला। आप देखिए कितना वाइड आउटलुक है गुरु नानक साहब का, समझे, अनुभवी पुरुषों का बड़ा नजरिया बड़ा वसी होता। वो किस नजर से देख रहे, जो दुनिया के किनारे खड़े होकर सब संसार क्या हो रहा हो, जो गोते खा रहे हैं उन बेचारों को क्या पता। आलम भी इसी में बह रहे हैं, बेलम भी इसी में बह रहे हैं, गाने बजाने वाले सब इसी में बैठे, लेक्चर देने वाले कथा करने वाले इसी में बैठे। अनुभव नहीं जागा ना, माया की जैद चढ़ी पड़ी है, बेसुध बेखबर पड़े हैं। आप कुछ जागता पुरुष इनको जगाए तो जागे ना, कौन जगा। हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता क्या कुनत बेटा, सारा जहान सो रहा है। अरे भाई तू भी उसके साथ सो रहा है, अब सोए हुए को जो मंदिरों के घाट पर सब सो रहे हैं। जब तक मंदिरों के घाट से ऊपर गया कोई महात्मा अनुभवी पुरुष न मिले, हमें कैसे जगा सकते। आलिम आपको इल्म दे सकता, डॉक्टर आपको डॉक्टर बना सकता, इंजीनियर आपको इंजीनियर बना सकता, एस्ट्रोनॉमर आपको एस्ट्रोनॉमी का इल्म दे सकता, अनुभवी पुरुष ही आपको फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस अनुभव को दे सकता, और कोई नहीं।
गुरमुख लंघे से पार पए, सच्चे स्यों लेवलाए।
आप फरमाते हैं कि कौन इस संसार सागर से पार हो सकते हैं कि जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं, जो गुर से थी सन्मुख हो, जैसे अनुभवी पुरुषों के सन्मुख बैठो। गुरुमुख लंगे से पार पहे, गुरुमुख संसार सागर से पार हो गए। गुरुमुख बन, मनमुख नहीं, जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, अपनी मति के अनुसार सारे काम कर रहे हैं, बुद्धि भी स्थिर हो तब आगे सिरसा अनुभव को शुरू होगा ना। तो कहते जो गुरुमुख बने, गुरु ने उनको नाम के जहाज पर कॉन्टेक्ट दे दिया, सीट दे दी, बैठ जाओ है। तुम सो रहे हो तो भी जा रहे हो, जागते हो तो भी जा रहे हो, डेक पर फिर रहे हो तो भी जा रहे हो, ये कैप्टन का फिक्र है, या गुरु या वो पावर जो उसको चला रहे। अब ट्रेन पर सवार हो गए, अब ड्राइवर का काम है या गार्ड का काम है, या वो पावर जो खींच रही, ड्राइवर गार्ड आपकी हिफाजत के लिए है और पावर खींच रही, گرو آپ کو پروٹیکشن دیتا مصیبت میں, باہر ہدایت دے کر مشکلات کا حل کرتا, ہر ایک طرح سے وہ پاور سر پر کھڑی, ہر ایک کی سنبھال کرتی جیسے ماتا بچے کی ہر ایک طرح سنبھال کرتی ہے, ایسے ہی انبھوی گرو پرش جو ہے وہ بھی سب جیو جو اس کے زیر اثر دائرے میں آتے سب کی سنبھال کرتا ہے, ایکسٹینڈ کرتا ہے پروٹیکشن اور نام لے جانے والی جہاز, دو ہی پاور. تو جو گرو مکھ بنے وہی پار گئے, گرو مکھ لنگے سے پار پہ سچے سے لبلا ہے, کس طرح سے پار ہوئے اس سچے پاور کے ساتھ لگنے لب لگانے. ہماری لیو کہاں لگی پی ہے؟ جسم میں, بال بچوں میں, دوستوں متروں میں, روپے پیسے اور جائیدادوں میں. لب ادھر سے ہٹے پھر اس کے ساتھ لب لگے. من ایک ہے بھائی, یہ من تو ایک ہے, پہوے جہاں لگائے پہوے گرو کی بھکت کا تو پہوے وشے کو. گرو کے ساتھ لگنا سمجھو پرماتما کی نزدیکی, جو انبھوی پرش ہے. سو کال گرو نہیں معاف کرنا, سو کال گرو سے چاہے دنیا بھری پڑی, بٹا اٹھاؤ تو گرو, بٹا اٹھاؤ تو سادھو, بٹا اٹھاؤ تو سادھو اور سنت. ارے بھائی ایسا انبھوی پرش جیسا اشٹ وکر تھا راجا جنک کا انبھو کرایا, ایسا انبھوی پرش کیجیے میں منگائی جا رہا ہوں. آج بھی اگر ایسا انبھوی پرش ملے گا آپ کو انتر کا کانٹیکٹ دیتا, جڑ چیتن سے اوپر آنے کے راز کو سمجھائے گا, تجربہ کرائے گا, انتر کی آنکھ کھولے گا, ایسا پرش بھاؤ ساگر سے پار ہو جائے گا. گرو کیا کہتا؟ نام کے ساتھ لگو, سچ کے ساتھ لگو, وہ آپ کی گھٹ گھٹ میں ہے. وقت باہر سے ہٹو اور ادھر لگو. بلے شاہ جب شاہ عنایت کے پاس گئے ہیں تو ان سے سوال کیا کہ مہاراج ہم پرماتما کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو فرمانے لگے سائندا کی پاونا ادھر پٹنا تو ادھر نہ ہٹا نہیں گیا. تو گرو مکھ ہو کر تم پار جا سکتے ہو, من مکھ ہو کر نہیں. پڑھے لکھے علم من مکھ کون؟ گرو امر داس جی صاحب نے اس کی تعریف فرمائی ہے, سے من مکھ جو شبد نہ پچھانے گر کے وہ کی سار نہ جانے. من مکھ وہ لوگ ہیں جو من ہندو کے مکھ بنے پڑے, پہلی بات ان کو کوئی شبد کا تعلق نہیں ملا, انتر نام سے نہیں جڑے, ہندو کے گھاٹ پر بیٹھے. اور انبھوی پرش ملا بھی ہے تو اس کا بہ دل میں نہیں پسا, ایسے پرش سارے ہی عالم بھی اور بے علم بھی. جو گرو مکھ بنیں گے وہ اس بہت ساگر سے پار ہو جاتا, جس کے جہاز پر کہو لائق بلا بیٹھ گیا اس کی موٹر پاور بڑی تیز ہے ڈوب نہیں سکتے, وہ تم کو ان طوفانوں سے بچا کر لے چلے.
آگن نواریا جیوتی جیوت ملا
کہتے ہیں اس طرح کرنے سے گرمکھ ہونے آنا جانا جو جنم مرن کا ہے نا آواگمن وہ مٹا دیا ختم کر. کیسے؟ جوتی جوت میں, اپنی جوتی آتما کو پرماتما کی جوتی میں ملا دینے سے آواگمن مٹ گیا. جب ہماری سوت مہارس کو پا گئی پرماتما کی جوتی میں ہماری جوتی سما گئی تو دنیا کی لذتیں کہاں رہ گئی؟ اگر وہ دنیا میں کام کرتا ہے اس پرماتما پریپورن جوتی کے سہارے کام کرتا ہے, یہ سب کے اتر وہی ہے, وہ اس کو نکالنے آتا وہ ملا ہے, وہ اس کا جنم من ختم ہو گیا. جو اس کے ساتھ لگتے ہیں ان کا بھی ختم ہو جاتا, اس کو بھی یہی دوا دیتا سرو دکھ کو اوکھنا, سرو دکھوں کا واحد علاج نام ہے. جی
گرمتی سہج اپجے سچے رہے سمائے.
فرماتے ہیں یہ سہج اوستھا کیسے مل سکتی ہے؟ سہج اوستھا کس کو کہتے ہیں؟ تین گنوں میں سہج نہ اپجا من مکھ بھرم پلائن, چوتھے پد میں سہج ہے گرمکھ بولے گا. تین گنوں کے اندر سہج اوستھا نہیں, ترگن اتیت اوستھا کو پہنچ کے چوتھے لوگ میں وہ سہج اوستھا کو پا گئے. कहते ये सहज अवस्था कैसे मिल सकती है, कहते गुरुमति सहज उपज सहज अवस्था आती है गुरु की मत द्वारा, ऐसे अनुभवी पुरुष की मति धारण करने से सहज अवस्था है वो सच जो है उसमें समा कर ये एक रूप हो जाता है, कतरा रूह का मालव रूह की समुद्र में समा कर उसमें जागृत हो, पर जब तक तीन गुरु के पार न हो ये अवस्था नहीं रहती। भगवान किसी जी ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, त्रैगुण विषय वेदा का जहां जिक्र किया है, कहा भवेतु अर्जुन, अर्जुन तू तीन गुणों के पार चल, तीन गुणों में आवागमन है, आना जाना बना रहेगा, जो चौथे लोग के बासी बन गए त्रिगुण अतीत अवस्था को पा गए उनका आना जाना खत्म है। कहते ये गति पाने के लिए गुरु मत की मौत आ जाए। गुरुमत किसको कहते हैं, गुरुवाणी में गुरुमत की तारीफ की है, गुरुमत दो किस्म की है, एक हर एक समाज की अपनी अपनी बाहरी रहनी बहनी है गुरुमत बाहरी, दूसरी अंतरी गुरुमत, बाहर की गुरुमत तो आपो अपनी अंतर की गुरुमत सबके लिए एक, गुरुवाणी में अंतर की गुरुमत की तारीफ की, नानक ए बेदबूजो गुरुमत राम नाम लिवला, रमे नाम के साथ जो लिव का लग जाना है ये अंतरी गुरुमत, ये विधि है गुरुमत की सच्ची जिससे सब जीवों की कल्याण है। बाहर की गुरुमत आप कोई भी धारण कर लो उससे जनमन खत्म नहीं होगा, हाँ किसी न किसी समाज में रहना है रहो, नहीं तो नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि इंसान सोशल बीइंग है, जिस समाज में है उसमें रहो, रहते हुए नेक पाक और सदाचारी बनो, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठे वो आपको नाम के झाल पर चढ़ा दे, बात है जी।
तप पीड़ाई पाए देख अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाए किसनो दीजे दोष।
कहते दुनिया की क्या हालत है, पिड़ाई वो होती है ना डिब्बिया जिसमें सांप रखते हैं बड़ा से पटारी जिसको कहते हैं, कि उसमें सांप बैठा और अंत से वो जहर छोड़ रहा हो, अरबारे अंदर ईर्ष्या द्वेष बढ़ रही, मन रूपी सांप है माफ करना जो हजारों तरीकों से जहर को चढ़ा रहा, गट गट में बैठा, उसके जहर के सबब से हम दुनिया में जहर आलूद हो रहे हैं, दुनिया में ही लंपट हो रहे हैं, ना इसकी जहर से बचे ना, अब जहर उतरे तब होश भी आए ना, जिसके सांप लग जाए उसके दिल दिमाग पर असर पड़ता बेहोश होता, जिसमें जलन पैदा हो जाती उसको कुछ पता नहीं लगता क्या करूं क्या ना करूं, तो कहते हैं पूर्व लिखा पाइए किस दीजिए दोष, जन्मों जन्मों से हमारी यही हालत रही, मन के बस में रहे वो जहर चढ़ाता रहा, उस जहर में हम आलूद रहे, उसी के सबब से जो काम किए आना जाना बना रहा, कहते हम किसको दोष दें, अपने किया हुआ पा रहे हैं, अगर मन के हाथों से बच जाए, मन की जहर जो जन्मों जन्मों से हम पर चढ़ रही है इसको उतार सके तब होश आए ना, कहते किसको दोष है, दोष न कहू दीजिए दोष कर्मा अपने, ऐ यू सो सो शैल गुरु रीत, जैसा तुम बीजोगे वैसा काटोगे, तो कहते हैं अब इसका उपाय क्या है आगे बताएंगे।
गुरुमुख गारुण जे सुने मने नाओ संतोष,
कहते गुरुमुख बने पहली बात, सांप लड़ जाए तो मांझी के पास जाते हैं ना, तो पहले गुरुमुख बनो, मांझी आकर मंत्र डालता, जब गुरुमुख बनोगे तो वो जो गुरु मंत्र सुनाता है ना उसको सुनो, वो किस चीज का नाम, नाम ही का मंत्र है, नाम की धुनि को सुनो उससे क्या होगा, तुम्हें संतोष और तृप्ति आ जाएगा, मन दौड़ने भागने से हट जाएगा, जहर चढ़ाने से हट जाएगा, जो आगे जहर चढ़ी है उसको उतारेगा, ماندی آ جائے سانپ لڑا ہوا ہو زہر چڑی ہو انسان بے سود بے خبر ہو وہ منتر ڈالتا ہے زہر اترتی اس کو ہوش آتی ہے پہلے جلن کم ہوتی درد کم ہوتا ہوش آنے لگتی کہتے ہیں اگر یہ من روپی جو سانپ جس کے ہزاروں منہ ہیں جو گھٹ گھٹ میں بیٹھا ہے یہ ہر وقت زہر چڑھا رہا ہے زہر کے چڑھانے کے سبب سے جنم مرنے آ رہے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی گرو مکھ بنو کسی آن مہی پوچھ کے سنمکھ بیٹھو وہ آپ کو وہ گارن سنا دے جو گٹ گٹ میں ہو رہا اس کے سننے سے اس کو نام کہا ہے من نے نام سنتوش ترپتی ہے آپ دیکھیے بھگوان کرشن جی نے گیتا کیا ان کے جیون چتر میں ذکر آتا ہے ایک جگہ الکار کے طور پر کہ انہوں نے دریا جمنا میں چھلانگ ماری نیچے ہزار منہ والا سانپ تھا اس پر بانسری کی دھنی بجاتی ہوئی نرت کرتی ہوئی اس کا ناگ نتن کیا یہ کون سا ہزار منہ والا سانپ یہی من جو گٹ گٹ میں بیٹھا اسی کے سبب سے ہم بار بار آ جا رہے ہیں اگر کوئی گرو مل جائے جو ہمیں وہ منتر سنا رہے جو گٹ گٹ ہے اس کے سننے سے ناگ نتن ہو جائے گا آنا جانا ختم ہو جائے گا بھول سے نکل آئیں گے ہوش میں آ جائیں گے جاگ اٹھے کیا خوبصورتی سے سمجھا رہے ہیں اب یہ اپدیش کن لوگوں کو ہے سب منش جاتی کو ایک سا اپدیش کھتری براہمن شود ویش اپدیش چو ورنوں کو سمجھا کھتری براہمن شود اور ویش چار ہی منش جاتی کے حصے بنائے گئے ہیں کہتے سب کو ایک سا اپدیش کل میں نام جپے ادرے سو نان کٹ کٹ مان کل یوگ میں جو نام جپے گا اس کا ادھار ہوگا وہ کہاں پر ہے کہتے گٹ گٹ میں نو ندھی امرت پرب کا نام دہی میں اس کا بساؤ اس نام کے ساتھ کون لگ سکتا تھوڑ کرم پایا تد جن کو سے نام ہر کے لگ والا جسے تو آپ دور سے دیا کرے وہ اس نام کے ساتھ لگتا ہے اکشی ناموں کے ساتھ تو ساری دنیا لگی پڑی اور کیا ملتا ہے اس سے کو نانک تہ سکھ ہوا اس کے سننے سے سکھ اور شانتی ملتی اس کی نشانی کیا ہے تت کہنا انہد واجہ انہد کی دنیا جو جاتی ہے وہ نام ہے نام کی دنیا جو گٹ گٹ میں ہو رہی ہے اس کے سننے سے من کی زہریں اترتی من قابو میں آتا من کے قابو کرنے کا اور کوئی اپائے سوائے نام کی دنیا من ہی ہماری اور اس پرماتما کے درمیان رکاوٹ کا ایک بڑا بھاری کارن من جیتے جگ جیت جس نے من کو جیت لیا وہ اسے جگت کو جیت لی ایک فقیر نے کہا گر تو داری در دلے خود عزم رفتن سوئے دوست یک قدم بر نفس خود نے دیگرے در پیے اگر تو اس پرماتما سے ملنے کا مسمم پکا ارادہ دل میں رکھتا ہے تو کیا کرو ایک قدم اپنے من پر رکھو کیا اس کو کھڑا کرو اور دوسرا قدم جو تم لوگے وہ پرماتما کی گلی میں پہنچ جائے من ہی من کے جیتے جیت ہے من کے ہارے ہار بات تو یہ تو فرما رہے ہیں من کو قابو کرنے کا علاج نام کی دنیا سنتوش ترپتی کو پا جاؤ جب ترپت ہوگا تبھی آگے چل سکوں گا جی
مگر مچھ پہائیے کنڈی جال بتائے درمت پھاتا پھائیے پھر پھر پچھوں تائے
من بڑا مگر مچھ ہے بھائی منہ کھولتا ہڑپ کر جاتا بڑے بڑے گیانی دھیانیوں کو کھا جاتا من کے ہاتھوں سب روتے چلے گئے من موجی کو جس نے مارا وہی سورما ہے دنیا میں اجدہا مار دیے تو کیا ہوا بھائی بڑے بڑے شیر مار دیے ببر مار دیے تو کیا ہو جس نے من کو مارا وہی بہادر کہتے یہ مگر مچھ ہے اب اس کو کیسے پکڑا جاتا ہے مگر مچھ کو جال بچھایا جائے سو کنیے لگائی جاتی ہیں بڑی بڑی زبردست. کنی میں جب پھنس جائے پھر اس کو کھینچ کے باہر نکال لیتے. تو یہ کنی ہے نام کی دھری, اسی سے من قابو آ سکتا. کہ درمت میں پھاٹھا پھائیے پھر پچھتا. انسان درمتی گرمت نہیں ملی, درمت میں جا رہا. اپنی عقل سے اسے نکالنا قابو پانا چاہتا کیسے پا سکتا. آتا پھر پچھتاتا روتا چلا جاتا, ہائے من ہائے دنیا ہائے بچے ہائے روپیہ ہائے جائیدادیں پھلا پڑا. من قابو ہو ترپتی ہو تب آگے چلے نا. من ہی ہمارے اس پرماتما کے درمیان رکاوٹ ہے. تو کہتے ہیں اس کے پکڑنے کا علاج یہ کہ کنڈی سے اس میں کنڈی ڈلواؤ بھائی, کسی ماچی سے. سر جو ماہر ہے وہ کون ہے؟ گرو ہے. اس کے پاس کنڈی نام کی ہے اور کیا. یہی سنسار ساگر سے نکلنے کا طریقہ, یہی طریقہ من کے قابو کرنے کا. یان بھی پوچھوں کی صحبت اس منڈل میں بھی چار دن کا تھوڑا ٹھکاؤ ملتا. جس ڈٹھیے من رہے سدگر کس کا نام, جس کے دیکھنے سے من کھڑا ہوتا اسی کا نام سدگر. یہ نشانی دی. اور اس کے پاس کون سی دوا ہے؟ نام کی. ترت ملاوے نام سے انہیں ملے جو کو. یہ تلسی صاحب کا سوامی جی مہاراج نے فرمایا بڑی خوبصورتی سے, سورت تو دکھی رہے ہم جانے, اے سورت ہم دیکھ رہے ہیں تو دکھی ہے ہم جان رہے. کہتے کب سے؟ جان دن تے تے شبد بسارا من سنگ جاری تھا. جس دن سے تو شبد اور نام پاور کو بھول گئی اور من کے ساتھ یاری اختیار کر لی, من کو اندریاں کھینچ رہی ہیں بھوگ و رسوم میں, اس دن سے تو دکھی ہے. اگر آپ ہم سکھی ہونا چاہتے ہیں تو من کو اندروں سے بچاؤ. اندری دمن ہو, من کھڑا ہو, بدھی بھی استھر ہو, تب تو سرت بنے گی اور سرت سے نام کے ساتھ لگ سکے. سب مہاتما نے ایک ہی علاج بتلایا. زبانانی اپنی ہے, طریقہ بیان اپنا ہے, من نفس مضمون وہی. جی
جمن مرن نا سوجھائی کرت نا میٹیا جائے.
جس کو گرمت نہیں ملی, درمت میں رہا, منمت میں رہا, وہ جنم مر میں آتے جاتے رہے, جیسے کرم کیے وہ بیٹے نہیں جا سکتے, اوش اس کو بھوگنے پڑے. بھگوان کرشن جی نے دھرت راشٹر سے سوال کیا تھا کہ اے دھرت راشٹر تو یہ بتلا کس جنم میں تم نے یہ کرم کیا جس کا نتیجہ آج تم اندھے ہو رہے ہو. تو کہنے لگے کہ مجھے یوگ بل سے 100 جنم تک کی تو خبر ہے پچھلا, اس میں کوئی کرم نہیں کیا. بھگوان کرشن جی یوگیشور گتی والے تھے, اپنا بل دیا تھوڑا. 107 جنم میں کرم تھا اس کا, یہ پھل تھا. بتاؤ کرم گتی بڑی بلوان ہے, تاری نہ کرے. تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ جن کو درمت میں پھانس رہے ہیں, گرمت نہیں ملی, وہ من کی زہر ان پر چڑھی ہے, وہ چھٹکارے میں آ ہی نہیں سکتے. جنم من میں آئیں گے, بار بار پیدا ہوں گے, جیسے کرم کیا وہ مٹ نہیں سکتے. اب ان کرموں کے بیٹھنے کا علاج کیا؟ کسی انمرہی پوش کے چرنوں میں جاؤ, جس کو گرو پد نصیب ہے. یہ کہنا گرو تو بتیرے ہیں, گرو پد سمرتھا رکھنے والا کوئی کو نہیں. ایک جگہ ایک بھکت نے کہا گوڑ کے ہو گرو کے کرنے کا گنی کیا ہے بھائی. جگت گرا جو کرم نہ ناسا, اے جگت گرو تیرے دھارن کرنے گرو دھارن کرنے کا ہمیں فائدہ ہی کیا ہے. بڑی لا تڑک بانی ہے. اگر کرموں کا ناش نہ ہو آپ کے چرنوں میں آ کر, سنگھ شرم کر جائیے جو جم گراس ہے, شیر کی شرم جانے کا کیا فائدہ. وہاں بھی گیدڑ آ کر بھنکے مارتے رہے. جب انمول پوش ملتا آپ کو کیا کرتا ہوں؟ اگلے کرم تم کو صاف کرتا, میں اس سے الگن مت کرو. کسی اہنسا کو دھارن کرو, کسی کا برا چتن نہ. चितवन तक न करो, कहना तो अलग है, सच को धारण करो, झूठ फरेब दगाबाजी रयाकारी कपट चोरी से बचो, ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रखो, नेक पाक जीवन बसर करो, ख्याल में भी मन में भी ख्याल अर्पित करो और सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न करो, ये निष्काम सेवा करो, इसको धारण करके फिर किसी अनमरी पुरुष के चरणों में बैठ जाओ, वो आपको इंद्रियों की घाट से ऊपर आने का रास्ता देगा, नाम का कांटेक्ट देगा, उसकी कमाई करते चलो, बाहरी कर्म आगने तो पितृ हो गए, प्रारंभ खुशी से भोगे जाएंगे, आत्मा को खुराक नाम की मिलेगी, आत्मा बलवान हो जाएगी और जो पिछले प्रारंभ कर्मों की शक्ति है वो भी आपको उतनी दुखदायी नहीं रहेगी जितनी आम दुनिया को है, और संचित कर्म नाम की कमाई करने से जल जाते हैं कि इंसान नेकर्म हो जाता है, जैसे डाले भट्टी में भूल नहीं भेजा है तो वो फिर उगते नहीं जमीन में दबाने पर, ऐसे संचित कर्म खत्म हो, ये किसी गुरु का काम है, देखिए कितना ऊंचा काम है। तो फरमा रहे हैं कि जो दुर्मत में रहे वो जन्म-मर में आते जाते रहेंगे, आना जाना खत्म नहीं हो, जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा।
हो मैं बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसे बिखर जाए,
कहते ये कैसे हम पर चढ़ी, कहते हो मैं किस कारण से, जब ये जाने में किस करता तब लग गर्म जोर में फंसता, हमें से सब मैल माया शुरू होती है, हमें बिख पाए जगत उपाया, शब्द उसे बिखता जगत जो उपाया उसे हाँ का एक अंश रखी, इंसान कर्म कर रहा उसकी सदा जरा भुगत रहा, कहते जब शब्द मिल जाए तो ये जहर उतर जाती, माया की जहर उतारनी है तो शब्द गारूड़ को सुनो, जहर उतर जाएगी, होश आ जाएगी, सोया हुआ जन्मों जन्मों का जीव जागू
जाने बिना, जो पक्षी चिद्दू, चिद्दूर एक पक्षी होता है जो जैसी बोली सुनता है वैसी नकल कर देता, कहते उस पक्षी चिद्दूर की तरह अगर उसने अपनी सुध को जो पिंड का रूप बनी बैठी ऊपर लाकर शब्द पावन के साथ नहीं जोड़ा तो वो चिद्दूर पक्षी की तरह, क्योंकि उस नाले जिस विंग में
न रहे, कर्ता होने का ख्याल न रहे, उसकी अंतर की आंख खुले वो देखता है परमात्मा परिपूर्ण सब काम कर रहा है, जैसा वो कहता है वो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो, और फिर साथ ही और क्या कहता है, मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो हो, वो तो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाता है, तो वो मालिक कर रहा उसी की हमें जा सकती, हमें आने जाने का मूल कारण है समझे, हमें कि मिटाना, न पढ़ने न लिखने न बिचारे न ग्रंथकार बनने न हजारों लाखों करोड़ों कर्म कर लो, कर्ता होने का ख्याल बाकी है, आना जाना बना रहेगा, स्वर्ग नर्क फिर फरावता, तो हो कि मिटाने का इलाज क्या है, गुरु नानक साहब ने आसद जी की वार में इसको खोल खोल कर समझाया, हाँ बिच आया हाँ बिच हुआ, बड़े लंबी चौड़ी तारीफ दी, आखिर कहते हैं हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमें, हमें लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज भी प्रभु ने इसके अंतर ही रख दिया, वो क्या है, कृपा करें जी अपनी दांग गुरु का शब्द हो, ऐसा शब्द जो गुरु द्वारे मिलता उसकी कमाई करेगा, उसकी हमें न रहेगी, हमें ममता शब्द जलाई गुरुमुख ज्योत निरंतर पाए, हमार ममता का नाश नाम की कमाई ये शब्द की कमाई से हो सकता, जब हमें न रही तो आने जाने कहा रहा, तू तू करता तू बिहा मुझ में रही न हूं, जब आपा फिर का मिल गया जब देखा तो तू सब जगह फिर वही है, वही कर रहा मैं कुछ, तो ऐसा पुरुष जीवन मुक्त है, ऊपर से कहने वाला नहीं अंतर से देखने वाला कि वो सब कुछ कर रहा हूं, मेरा किया किछु न हो जो हर भावे से हो, कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाता हूं, वो हुक्म के बूझने वाला हो जाता हूं, गुरु नानक साहब ने जपजी साहब ने इस बात का निर्णय किया, हुक्म के जानने वाले की निशानी क्या है, नानक हुक्मे जे बुझे ता हौ मैं कह रखो, उसमें हौ नहीं रहती। वो कहते वो कर रहा परमात्मा को परिपूर्ण, वो देख रहा है।
धंधे धावत जग बाध्या ना बूझे विचार, जमण मरण विसारिया मन मुख मुगध गंवार।
धंधा लफ्ज कहते हैं किसको, काम का नाम धंधा नहीं, धंधा उस तरह काम करती जो अंतर चेष्टा अटैचमेंट बन जाती है उसका नाम धंधा। ब्रह्मज्ञानी को ना ही धंधा, अनुभवी पुरुष काम करता मैं उसकी उसमें अटैचमेंट नहीं, काम तो करता लोगों से हजारों गुना सैकड़ों गुना ज्यादा करता मैं अंतर में अटैचमेंट नहीं। जो मनमुख मुख है लोग जिनको गुरु मुख नहीं मिले, जीवन मुक्ति को नहीं पाए, उनकी क्या हालत है कि वो धंधे में बंद रहे, सारा जगत इसी अटैचमेंट में अंदर दिली ताल्लुक जो बना हुआ बंधन है इससे वो बंद रहे। धंधे तहावत जग बाध्यान ना बूझे विचार, उनको विवेक नहीं, विचार से काम नहीं ले रहे, काम अंधाधुन कर रहे हैं। जहां विवेक नहीं वहां सत्य सत का निर्णय नहीं, जहां सत्य सत का निर्णय नहीं होश कहां से आएगी। अंधाधुन दुनिया काम कर रही है, मारो मार कर रही है और बंदी पड़ी है दिल से, उसकी सजा जजा भुगतनी पड़ेगी, फायदे की बात। जमन मन विसारिया मनमुख मुगुत गवार, जो मनमुख लोग हैं वो बेचारे बूढ़ हैं गवार पुरुष हैं, उनको जन्म मन का पता ही नहीं, मरना भी है या पैदा भी होना ये क्या, हमें को पता है माफ करना, हमें बहुत याद ही नहीं, आए जो है पैदा हुए ना, जाना भी है कभी ख्याल आया कभी नहीं, मस्त है जैसे एक नशे में इंसान जा रहा पता ही नहीं। मोह माया सब जग सोया सब सो रहे, मोह माया के अंतर कौन जानता, कह कभी तई नर जागा जब यम का दंड मूल में लगा, अंत समाता पिंड से रू निकलती हो ये क्या होगा, उस वक्त क्या बन सकता है। जीते जी अगर पिंड से ऊपर आने का राज जान जाता, उस मालिक के हुक्म के बूझने वाला हो जाता, कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान हो जाता, तो आना जाना खत्म हो जाता, जो किए वो भुगतने पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। कहते जो मनमुख है वो बेचारे बूढ़ के बूढ़ बने रहते, उनके अंतर विचार नहीं विवेक नहीं, बंधन में है, कर्म करते हैं भुगते जाते हैं, जहर खाते हैं कड़वल पड़ते हैं हाया करते हैं और जहर खाते चले जाते हैं। यह हालत है दुनिया की, जिसे सारी दुनिया जन्म मन विसारिया भूल चुके मौत किया, जिन्हीं चलन जाना सो क्यों करे विथार, जिन्होंने अंतर जाना तस्लीम कर लिया कि जाना है, वो इतने झूठ प्रेम के पसारे क्यों करेगा। हम कितने मस्त हैं दुनिया में, जो कर छट गुआवड़ा तिस लगा मनमा है, जिथे जाए तो दुवर्तना तिसकी चिंता ना है। अरे भाई जो घर ये जिसम और इसके तलकात एक दिन तूने छोड़ देते हैं गवा देते हैं, वो तू मन करके लगा पड़ा दीन ईमान तुम्हारा बना पड़ा। अरे भाई आखिर छोड़कर कहीं जाना है, कहाँ जाना है इसका तो जो फिक्र भी नहीं, कौन रहा और कौन रह सकता, जाना है तो किसने जाना है कहाँ जाना है इसका कभी ख्याल आया कोई नहीं, सब भूल में जा रहा। कहते ऐसे लोग क्योंकि गुरु नहीं मिला ना, गुरु मुख नहीं बने, होश नहीं है, कहते वो बूढ़ है गए गुजरे इंसान गवार पुरुष, उन्हें एक चीज दिमाग में नहीं बैठती कि मैं अब कर क्या रहे, जाना तो है जिस्म छोड़ना है अवश्य छोड़ना है, सब ने छोड़ा हमने भी छोड़ना, बड़े बड़े वली अवतार आए जिस्म लिया और छोड़ गए, तो क्या हमने ही छोड़ेंगे अवश्य छोड़ेंगे। ये एक ऐसी फेट है जो सबको इंतजार कर रही है, ग्रेट फाइनल चेंज, मौत कोई हवा नहीं भाई, मगर सब ने जिस्म छोड़ना, अगर इस रात को जीते जी पिंड से ऊपर आना सीख जाए, उस नाम के महारस को पा जाए, इसकी जीवन की कल्याण हो जाए। बात
धंधे धावत जग बांधिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुगध गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार।
कहते इस हाल से कौन बच सकते हैं? कहते जिसके सिर पर कोई समर्थ पुरुष का हाथ हो वही बचे तो बचे नहीं तो सब बह रहे हैं भाव सागर में गोते खा रहे हैं जन्म मरण में आ रहे हैं। उन्हीं की आंख खुलती है जिसको गुरु मिलता हो। पहले दिन ही आपको बिठाते ऊपर हो जिसमें मिट्टी का ढेर है क्या कर रहे हो तुम? आंख खुल जाती है ना। तो फरमाते हैं गुर राखे से उबरे वही उबर सकते हैं संसार सागर में सच्चा शब्द विचार। किसके आश्रय? शब्द और सच्चा शब्द फिर वही बात आ गई नाम और सच्चा नाम वो शब्द पाव जो खंडो ब्रह्मंडों को ले खड़ी है घट घट में है इंदो के घाट से ऊपर फिर आगे चक्र के ऊपर उसका तलक मिलता उसके साथ गुरु जोड़ देता उसका ये काम जो उसके साथ जोड़ सके उसी के नाम गुरु। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव गुरु नानक साहब ने यही फरमाया घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरख सुजान जो इस जिस्म रूपी घर में हमें अपना असली घर दिखा दे उसका नाम सतगुरु सुजान सतगुरु। पांच शब्द तुम घार तुम ते बाजे शब्द निशान वो शब्द की निशानी देगा तुमको पांच धुनों के हाथ से सब महात्मा ये उपदेश देते हैं। तो यही फरमा रहे हैं कि संसार सागर से कौन उबर सकता है गुर राखे सो उबरे जो खुद ही उबरा नहीं हमको कौन उबारे जो मंदिरों के घाट पर बैठा हजारों ज्ञान ध्यान लेक्चर तुमको सुना ले सारी दुनिया के ग्रंथों का वो हाफिज बन जाए नो के जबान हो जाए फिर तुलसी साहब क्या कहते हैं चार अठारह नौ पढ़े खट पर खोया मूल चारों वेद अठारह प्राण नौ व्याकरण छह शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए अगर सारी दुनिया की धर्म पुस्तकों का ज्ञाता हो सुरत शब्द जाने बिना जो पंछी चिंडू चिंडूल एक पंछी होता है जो जैसी बोली सुनता है वैसी नकल कर देता है। कहते उस पंछी चिंडूल की तरह अगर उसने अपनी सुरत को जो पिंड का रूप बनी बैठी ऊपर लाकर शब्द पावर के साथ नहीं जोड़ा तो वो चिंडूल पंछी की तरह बुक इज नॉलेज इज विल्डरनेस जो किताबी ज्ञान है ये जंगल है जिससे निकलना महाल। सारे ग्रंथ पोथी यही कहते तुम्हारे अंतर परमात्मा है आत्मा इंद्रों के घाट पर मन के आस से बनी पड़ी ऊपर आओ नाम के साथ लगो ये घट घट में जिक्र करते हैं मन खर पढ़ लेना काफी नहीं जब तक अनुभवी पुरुष मिले नहीं हमको पिंड से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोले नहीं हमें राजा जनक की तरह थोड़ा विश्वास हो कि हाँ महाराज मुझे ज्ञान मिल गया लेने वाला न कहे तब तक कल्याण नहीं।
गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार।
लेकिन जहाज होता है समुद्र में लहरें आती हैं तूफान होते हैं कैप्टन देखता है भाई किससे ये बच सकता है वो अपने उस वक्त समझता है इस तरह से निकल सकता है। इसी तरह गुरु जो सिर पर वो हमें गाइड करता रहता है कदम कदम पर बाहर भी और अंतर भी संसार सागर से ताजे एक दिन आता है हम अतीत हो जाते हैं दुनिया से उस गति को पा जाते हैं जिसको उसने खुद पाया। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान और लोहा कंचन कराए कर ले आप संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है भाई। पारस लोहे को सोना बनाता पारस नहीं बनाता संत आपको संत बना देता किन्नी भारी बख्शीश। उसमें और आम दुनिया के लोगों में फर्क क्या? उसने अपनी आत्मा को मन इंद्रों से आजाद करके नाम के साथ जुड़कर नाम में पहुंचा वो माउथ पीस ऑफ गॉड बन गया है। चीज वो भी है हम में भी है मगर अभी गुप्त है। सब काट मेरे साइया सुनी से न कोई बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो
सब घटों में वो मालिक बस रहा है, कोई सेज खाली नहीं जहां पर परमात्मा न हो, कोई घट खाली नहीं। बस जिसके अंदर प्रगट हो चुका है ना, वो बाहर जाने चुका, उसके पास हम जाते, अरे भाई हमको भी प्रगट कर दो, बात तो यही है तो हम नहीं, मैं दबी दौलत आती है दबी चली जाती है, ये इंसान भूखे का भूखा पड़ जाता है, जन्म मन में आता जाता है। एक संगत एक बसते मिल बात न करते, भाई एक ही संगत में रहती है, एक ही घर में रहती है, दो भाई आत्मा और परमात्मा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कितना अफसोस है। परमात्मा ग्रंथों पोथियों में नहीं, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, जिक्र उन तजुर्बों का जिक्र है जो महात्माओं ने प्रभु के साथ किए है। तुम जब वो हमारी आत्मा की आत्मा है, हम भी इसमें है, वो भी इसमें, देखते क्यों नहीं, अफसोस है।
गोर राखे से उभरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए उड़े ताए कावार।
सुवट कहते हैं तोते को, इस जिस्म रूपी पिंजर में हंस बोल रहा, कहते अगर हम जन्म मंत्र इसमें बोल रहा है, इसी की अटैचमेंट है ना, अगर इसके अंदर प्रेम का पिंजर बन जाए, समझे, प्रेम के पिंजर तन बन जाए, प्रेम का प्रेम मुजस्म हो जाए, और इसके अंदर आत्मा रूपी हंस जो है तोता वो बोलने लगे, प्रेम की बानी बोलने लग जाए, तो वो क्या करेगा, सच को चुगने लग जाएगा, क्या नाम के साथ लगने लग जाएगा, प्रेम का क्या खासा है, बेहतर त्याग जाएगा। दुनिया की तलवार ऐसी है जो एक चीज पर चलाओ दो टुकड़े करती है, प्रेम की तलवार ऐसी है दो हृदयों में चले एक रूप करती है, प्रेम का खासा है यक्षुई, प्रेमी सच्चा बैरागी है, वो अपने प्रीतम के प्यार में बैठा, हजारों में बैठा लात अलग है, समझे। अगर मोटर में पेट्रोल ना हो, पेट्रोल चल मोटर चलती है कभी, जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं वो प्रभु को नहीं पा सकता, तो प्रेम का पिंजर बना हुआ है, फिर बोली बोलो तो काम करें। प्रेम एक सुई देने वाली चीज, प्रेम सच्चा बैराग देने वाली चीज, प्रेम का खास है दो से एक रूप होने, जब तक ये नहीं बनेगा काम नहीं बनेगा। जितने हम साधन कर रहे हैं, पूजा पाठ पढ़ना पढ़ाना तीर्थ यात्रा हवन दान ये वो, इनके करने का मतलब क्या, कि ये करते ही हमारे अंदर उस प्रभु के लिए प्यार पैदा हो, अगर प्यार नहीं पैदा होते तो इसका क्या फायदा, ये जिम्नास्टिक का करते रहो सारी उम्र करते, प्रभु की याद में बैठे सिमन करने लगे, दिल उभरा नहीं, दो आंसू बहे नहीं, बताओ ऐसी याद क्या करेगी, भरे हुए दिल से जो याद है ना वही फलेगी। तो प्रेम का पिंजर बनाओ, बस जैसे मूल साहब ने फरमाया, साच कहूं सुन ले ओ सब जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपाओ, ऐ लोगों मैं तुमको सच सच की बात कहता हूं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। तो परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम, जो प्रभु के साथ तो प्रेम करता है, भाइयों से दुश्मनी करता है, अरे भाई वो प्रेम का है, परमात्मा तो सब में है। ये तो प्रिया मिलन भी सीखता ही या न ठाई कही, अगर तुझे उस प्रीतम से मिलना है तो किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत, क्योंकि सबके अंतर वो है प्रभु का प्यार, जिस हृदय में है परमात्मा का भक्त है, और दुनिया से दुश्मनी करेगा कभी नहीं करेगा। سو پریم کا پنجر بنا. شمس تبریز صاحب نے یہی فرمایا, صد سال عبادت کو ند نوازی نیست, کسی کو عشق ندار خدا راضی نیست. سو سال عبادت کرتے رہو تم نمازی نہیں بن سکو گے. کسی کے اندر جب تک پریم یا عشق نہیں جاگا پربھو کے لیے تو وہ خدا کے راز کو نہیں پا سکے. تو گرو نانک صاحب فیصلہ کرتے ہیں بھائی پریم کا پنجر بناؤ اگر پربھو کو پانا. پریم میں پھر جب کشش ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, سود ہے, گداد ہے, برا ہے, بے چینی ہے, بے حالی ہے, بیرے عشق پیچ عشق نارا نیست. پریم ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارا نہیں, جو جام بے سپار بھی چارا نہیں. جب تک جان حوالے نہ کر دو اور کوئی علاج ہی نہیں, کیا کر سکتے تو اس مالک کا پریم پیدا کرو. کہاں سے آئے گا؟ کھیتوں میں یہ اگتا نہیں, دکانوں پر بکتا نہیں. پریم کے پیدا کرنے کے دو ہی طریقے, ایک جو پریمی ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کی صحبت سنگت ہے, اس کے آپ کو انفیکشن ہوگی, اس کے پرمانو تم میں اثر کریں گے, تم میں کشش پیدا ہو, لائف سے لائف آئے. پریم کی جھلک کسی پریمی کی آنکھوں میں دیکھو گے, کتابوں میں اس کا ذکر ہے. لفظوں کو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ وہ پریم کو بیان کر سکے. پھر ایسی حالت میں کیا کرنا؟ دوسرا طریقہ ہے یاد. جس کا پریم ہو اس کی یاد رہتی ہے نا ہر وقت, وہ بھولتا نہیں, اس کی شکل آنکھوں میں سمائی رہتی ہے, دل دماغ میں سمائی رہتی ہے, خون کے دوران میں وہی چیز دورہ مارتی رہتی ہے. یہ پریم کا خاص ہے. ارے بھائی تم اس کو اتنا یاد کرو کہ تمہیں وہ بھولے. یاد کرنے سے کشش پیدا ہوگی, پہلے جی کرے گا دیکھنے کو, پھر دیکھنے کے بعد ملنے کو جی کرے گا, پھر معاویت میں جائے گا. یہ پریم کے درجے ہیں. تو دو ہی طریقے ہیں, جس کا پریم کرنا ہے دل میں اس کی یاد بساؤ, سمجھے, بنتے بنتے وہ بن جائے گی. یا ایک اور اس سے اعلیٰ طریقہ اور کیا ہے, آگ جل رہی ہے, جلتی ہوئی آگ سے آگ لے آؤ, دوسری لکڑ کو رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کرو. پچھلا پہلا طریقہ نہایت آسان, اس لیے سنگت کا اثر لکھا ستسنگ. کبیر صاحب نے فرمایا کہ وہ گاندھی ہے, سینٹس بیچتا, گاندھی کی دکان سینٹس جو بیچتا, خوشبوئیں بیچتا, اس کی دکان پر چلے جاؤ, وہ آپ کو کچھ بھی نہ دے, تمہارے کپڑے مہک جاتے. اگر ایک شیشی سینٹ کی بھی ساتھ دے دے تو کیا کہتا ہے؟ ایسے آدمی پرش جو